Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Giri Nibham Charu Chandra Vatansam रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय 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 नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम
हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो
हराय भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम नमो भवाय
भवाय नमः ओम
भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम नमो भवाय भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम नमो भवाय
भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम
नमो भवाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ
नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ
शिवाय नमः ॐ
शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव
निरन्तरम्
जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव
निरन्तरम्
स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय में 19वें मंत्र की व्याख्या है। नैनमूर्ध्वं न तीर्यं च
नैनमूर्ध्वं न तीर्यं च
नमद्धे परिजग्रभत्
नमद्धे परिजग्रभत्
न तस्य प्रतिमा अस्ति
न तस्य प्रतिमा अस्ति
यस्य नाम महद्यशः
यस्य नाम महद्यशः
न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य
न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्
हृदारिदिस्थं मनसायेनम्
हृदारदिस्थं मनसायेनम्
एवं विदूरं ऋतास्ते भवन्ति
एनमेव ऋतास्ते भवन्ति
अजात इत्येवं कश्चित्
अजात इत्येव एवं कश्चित्
अजात इत्येवं कश्चित्
अजात इत्येवं कश्चित्
भीरुः प्रपद्यते
भीरुः प्रपद्यते
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखम्
रुद्रं यत्ते दक्षिणं मुखम्
तेन मां पाहि नित्यम्
तेन मां पाहि नित्यम्
मानस्तो केतनये मान आयुषि
मानस्तो केतनये मान आयुषि
मानो गोखु मानो अश्वे कुरीरिकः
मानो गोखु मान अश्वे कुरीरिकः
वीरान् मानो रुद्रभामितो
वीरान् मानो रुद्रभामितो
वदिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे
वदिर्हविष्मन्तः सदामित्वा हवामहे।
तो प्रसंग चल रहा है। इससे पहले ही बता दिया था तद अक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम्।
वो जो शिव तत्व है शिवैव केवलः, जिसको श्रुति ने शिव कहा, जिसको श्रुति ने ब्रह्म कहा, वो एक ही चीज है। वह अक्षर है, अविनाशी है, कभी भी किसी भी निमित्त से नष्ट नहीं होता। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक पदार्थ ऐसे हैं कि जो किसी निमित्त से पैदा होते हैं, और जब तक वह निमित्त नहीं मिलता है तब तक वह पैदा नहीं होते। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि स्वयं ही पैदा होते हैं, किसी अन्य निमित्त से निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते। इसी तरह कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो किसी अन्य निमित्त से नाश भाव को प्राप्त होते, नष्ट होते हैं। जब तक अन्य निमित्त प्राप्त नहीं होगा तब तक नष्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि वह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, उनको नष्ट होने के लिए अन्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे बरसात में जब बारिश होती है तो पानी में पानी का एक गुब्बारा दिखता है, उसकी पैदाइश तो पानी के वेग से, ऊपर से जो वेग है उससे पानी में गिरने से पानी के अंदर एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे में हवा भर जाता है, और जब वो पानी की सतह का जो पानी है वो अपने जगह बनाता है तो हवा को बाहर फेंकता है। वही जो बाहर फेंका गया हवा है वो गुब्बारे के रूप में दिखने लगता है। तो वह गुब्बारा बनता तो अन्य निमित्त से है लेकिन फूटता स्वयं ही है। किसी अन्य निमित्त से वो फूटता है, कोई और कोई फोड़ता है, ऐसा नहीं है। बनता है पानी के निमित्त से और फूटता है स्वयं ही वह। ऐसे संसार में बहुत से पदार्थ हैं जो स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं नष्ट होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि अन्य निमित्त से पैदा होते हैं और स्वयं नष्ट होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि अन्य निमित्त से पैदा होते हैं और अन्य निमित्त के द्वारा ही नष्ट होते हैं। लेकिन एक वस्तु ऐसा है वह किसी भी निमित्त से पैदा होता नहीं और किसी निमित्त से वह नष्ट भी नहीं होता है। अच्छा, अन्य निमित्त से पैदा नहीं होता है और अन्य निमित्त से नष्ट नहीं होता है तो स्वयं पैदा होता होगा और स्वयं ही नष्ट होता होगा। तो स्वयं भी पैदा नहीं होता और स्वयं भी नष्ट नहीं होता, उसकी ये विशेषता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस वस्तु का नाम क्या है, तो शिव। उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है, जो न किसी निमित्त से पैदा होता है, न किसी निमित्त से नष्ट होता है, न स्वयमेव पैदा होता है, न स्वयमेव नष्ट होता है। उत्पत्ति और विनाशता न निमित्त जन्य है, न स्वयमेव है। उसके स्वरूप में उत्पत्ति पना भी नहीं है, उसके स्वरूप में विनाश पना भी नहीं है। उसी बात को तदक्षरम कहा। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसकी व्याख्या भी कल हुई थी। यह सविता एक उपलक्षण है, समस्त देवताओं के लिए सविता पद प्रयोग हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी उपलक्षण वहां कहा जाता है, एक को ग्रहण करके अन्य को भी ग्रहण किया जाता है, तो वहां वो जो एक ग्रहण किया है उसको उपलक्षण कहते हैं। यहां सविता को ग्रहण किया गया है, एक को यानी सूर्य को ग्रहण किया है, सूर्य को लिया है। सूर्य उसके स्वरूप को नहीं जानता। तो सूर्य यदि नहीं जानता है तो संसार में जितने भी देवता लोग हैं ये कोई भी नहीं जानते। सूर्य उपलक्षण यहां तक की सूक्ष्म समष्टि अभिमानी चैतन्य जिसको हिरण्यगर्भ कहते हो, जिसको प्रथम शरीर ही कहते हो, जिसको चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हो, जिसको विष्णु कहते हो, जिसको रुद्र कहते हो, ये सब भी नहीं जानते उनको। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये सब सोपाधिक हैं और ये जो शिव है वो निरुपाधिक है। सोपाधिक निरुपाधि को नहीं जान सकता। उपाधि वाला व्यक्ति निरुपाधिक को नहीं जान सकता। परिच्छिन्न व्यक्ति अपरिच्छिन्नत को क्या जानेगा? वो अल्पज्ञ व्यक्ति सर्वज्ञ को कैसे जानता है? एक बात अलग है कि हमारी बहुत छोटी उपाधि है, एक शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, तीसरा शरीर है कारण शरीर, ये सब उपाधि हैं। लेकिन ये उपाधि भी बहुत अल्प उपाधि, बहुत छोटी उपाधि है। लेकिन परमात्मा की जिसको ब्रह्मा कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जिसको विष्णु कहते हैं पालनकर्ता, जिसको रुद्र कहते हैं संहारकर्ता, यह भी उपाधि वाले हैं। क्योंकि उपाधि से युक्त होकर ही सृष्टिकर्ता बने हैं, उपाधि से युक्त होकर ही पालनकर्ता बने हैं, उपाधि से युक्त होकर ही संहारकर्ता बने हैं। ये उपाधि यदि इनकी बात हो जाए तो न ये सृष्टिकर्ता रहेंगे, न ये पालनकर्ता रह पाएंगे, न संहारकर्ता रह पाएंगे। ये वेदांत की प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, अन्यथा नहीं लेना इसको। आप कहोगे कि यह आत्मानंद ऐसा आ गया कि विष्णु का भी अस्तित्व नहीं है, कह देता है विष्णु पालन नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते हैं, तो क्या आत्मानंद का बाप पैदा करेगा, पालन करेगा? दिल्ली में ऐसे हुआ था एक बार, हम कथा कर रहे थे तो कथा के प्रसंग में उपाधियों की चर्चा आई। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर, जब इसकी व्याख्या कर रहे थे तो किसी ने पूछा, महाराज ये कार्य उपाधि क्या है, कारण उपाधि क्या है? तो आप लोगों को कई बार बता दिया गया है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंतकरण अंतर्गत जो अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको कार्य कहते हैं। और जिस चैतन्य की मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कार्य उपाधि है उसको परिच्छिन्न जीव कहते हैं। और कारण उपाधि ईश्वर, कारण माने क्या? तो बोले इस सबका कारण जो माया है, माया है या विशुद्ध सत्व है, ये उपाधि जिसकी है वह ईश्वर है। इस तरह हमने समझाया तो थोड़ा सा उन श्रोताओं के बुद्धि चालन के लिए हमने एक प्रश्न कर लिया। देखो भाई तुम्हारे पास अंतकरण है, अंतकरण है कि नहीं? तो बोले है महाराज। मन बुद्धि चित्त अहंकार है कि नहीं? बोले है। अच्छा तुम्हारे पास मन है कि नहीं? बोले है। चित्त है कि नहीं? बोले चित्त भी है महाराज। बुद्धि है कि नहीं? बोले बुद्धि भी है। अहंकार है कि नहीं? बोले अहंकार भी है महाराज। ये चारों चीज हमारे पास है, क्योंकि ये चार मिलकर जो अंतकरण बना है वही तुम्हारी उपाधि है, उसी के चलते तुम चिदाभास प्रज्ञानात्मा हुए हो, तब तो वो तुम्हारे पास रहेंगे ही। बोले हां। फिर हमने घुमाकर बात कही, ईश्वर के पास बुद्धि है कि नहीं? तो बोले है महाराज। ईश्वर के पास चित्त है कि नहीं? बोले है महाराज। ईश्वर के पास मन है कि नहीं? बोले है महाराज। ईश्वर के पास अहंकार है कि नहीं? बोले नहीं है। हमने कहा तू सबसे बड़ा मूर्ख हो गया, और क्या। अरे भाई जिसके पास बुद्धि रहे और उसके पास अहंकार न रहे, ये संभव है? ऐसी बात करते हो? किसने पढ़ाया तुमको वेदांत की प्रक्रिया?
ईश्वर के पास बुद्धि है तुम कह रहे हो, ईश्वर के पास चित्त है कहते हो, ईश्वर के पास मन है कहते हो, और कहते हो कि ईश्वर के पास अहंकार नहीं है। तो वो कहने लगा, नहीं महाराज, अहंकार तो जीव के पास होता है, ईश्वर के पास कहां अहंकार होता है। ईश्वर तो जो कुछ भी करता है, करने पर भी कर्ता का अभिमान नहीं करता है, इसलिए ईश्वर के पास अहंकार होता ही नहीं है। हमने कहा, यदि तुम ईश्वर के अहंकार नहीं मानते हो तो यह तुमको मानना ही पड़ेगा ईश्वर के पास बुद्धि भी नहीं है। ये तुम गलत मान रहे हो, वेदांत की प्रक्रिया ही नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब है ईश्वर के पास मन भी नहीं है, ईश्वर के पास बुद्धि भी नहीं है, ईश्वर के पास चित्त भी नहीं है, ईश्वर के पास अहंकार भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतःकरण उपाधि ईश्वर की है ही नहीं। क्योंकि अंतःकरण में चार चीज आएंगे, चार चीज ऐसा नहीं है कि दो चीज रहे दो चीज न रहे, ऐसा ये नहीं है। एक चीज रहे तीन चीज न रहे, या तीन चीज रहे एक चीज न रहे, ऐसा नहीं होता है। ये अंतःकरण चारों मिलकर एक हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों मिलकर एक हैं। जैसे आप जिस कुर्सी में बैठे हो, ये कुर्सी के एक पांव को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, क्या तुम्हारे बैठने लायक रहेगा ये कुर्सी? है? तीन पांव तो रखा जाए और एक पांव को उसको हटा दिया जाए निकाल के, तो तुम्हारे बैठने लायक होगा ये कुर्सी? कुर्सी कुर्सी के लायक होगा? बैठने लायक होगा? उसकी कुर्सी पना खत्म हो जाएगी, उसको बैठने योग्य ही वह नहीं रहेगा, वह किसी काम का नहीं रहेगा। तब अंतःकरण में से यदि आप अहंकार को हटा देते हो तो ये समझ लो कि वो अंतःकरण पूरा का पूरा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ना वह संकल्प विकल्प कर पाएगा, ना वह निश्चय कर पाएगा, ना उसके संस्कारों को ज्ञान के रूप में रख पाएगा, ना अभिनिवेश कर पाएगा, ना तुम ये कह पाओगे कि मेरे पास इस विषय ज्ञान है, तुम ये कह ही नहीं पाओगे। अहम अत्र अस्मि ये भी नहीं कर पाओगे ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो स्कूल क्लास में मास्टर हाजिरी लगाता था। आप लोगों को भी लगाता होगा, लगाता था ना, तो हाजिरी लगाता था, तो नाम पुकारता था वो। तो आजकल क्या बोलते हैं? यस सर बोलते हैं ना। उस समय क्या बोलना पड़ता था? अहम अस्मि ये बोलना पड़ता था हमको। तुम लोग तो हिंदी गुजराती पढ़े इसलिए हाजिरी है, हम लोग हाजिरी नहीं कहते थे। अहम अस्मि मैं हूं ये कहना पड़ता था। अब ये अहम अस्मि ये कौन कहेगा? अहंकारी व्यक्ति कहेगा कि बिना अहंकारी कहेगा? अहम अस्मि ये तो अहंकार के कारण ही तो कहना पड़ेगा ना। यदि चित्त अंतःकरण में अहंकार का पार्ट्स न होता तो तुम ये कह ही नहीं पाते कि अहम अस्मि मैं यहां पर हूं, अहम अस्मि ये नहीं कह पाते। तो अहम अस्मि ये तो अहंकार का काम है, ईश्वर में नहीं है, क्योंकि अंतःकरण ईश्वर में नहीं है। तब फिर उसने पूछा, महाराज ईश्वर के अंतर्कर अंतःकरण नहीं है तो अंतःकरण नहीं है तो बुद्धि भी नहीं है। हमने कहा तो उन लोगों को बहुत कठिनाई हो गई कि महात्मा कहता है कि ईश्वर के पास बुद्धि ही नहीं है, कैसा मूर्ख महात्मा है। सत्संग के बाद बहुत बहस हुई वहां सत्संगियों के बीच में, तो जाके पूछना चाहिए कि इन्होंने ईश्वर के पास बुद्धि नहीं है कैसे कहा। ईश्वर के पास बुद्धि नहीं है तो हम लोगों को कैसे जानेगा, जगत को कैसे जानेगा, ये सारी व्यवस्था कैसे करेगा? लेव जी आए स्वामी जी, आप सुबह जो प्रवचन में कहा है उसके बारे में कुछ विचार चल पड़ा है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। हमने कहा क्या है भाई? बोले आपने सुबह कहा प्रवचन में कि ईश्वर के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो ये सारी जगत को वो जानेगा कैसे? बुद्धि नहीं है तो ये संसार को मैं रचना करूं ये कैसे संकल्प करेगा वो? मन नहीं है तो संकार के संसार के विश्व की सृष्टि करने की इच्छा कैसे करेगा वो? तो हमने कहा कि तुम प्रक्रिया को नहीं जानते हो इसलिए तुम्हें ये समस्या हुई है। हमने कई बार आप लोगों को समझाया है जीव जो कुछ भी संकल्प करता है अंतकरण के वृत्ति से करता है, ईश्वर संकल्प करता है माया वृत्ति से। ईश्वर जीव जो कुछ भी जानता है बुद्धि से जानता है, ईश्वर में जो कुछ भी जानना पना है वो माया से है। इस जीव में जो कुछ भी संकल्प विकल्प इच्छा है, एक से अनेक होने की जीव की जो भी इच्छा है वह चित्त की वृत्ति से करता है और ईश्वर माया वृत्ति से करता है, क्योंकि अंतकरण का जो सब कुछ धर्म है, कार्य के जो सब कुछ धर्म है वह उसके जो कारण माया है, माया में वो सब स्वाभाविक रूप में रहने के कारण वह कारण उपाधि से सब कुछ करता है। इसलिए उसकी जो इच्छा करना वो माया है, माया वृत्ति है। उसके पास सबको जानना, ये जानने की जो बुद्धि है वो माया बुद्धि है, माया के द्वारा समष्टि, उसी को समष्टि कहा गया है। तो वह माया वृत्ति से सब जानता है, माया वृत्ति से सब कुछ संकल्प कर सकता है जो आप अंतकरण की वृत्ति से करते हो। तो ये प्रसंग चल रहा था, तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम। वह सविता के द्वारा वर्णीय है, यानी सविता शब्द का अर्थ सूर्य, सूर्य यहां उपलक्षण है। समष्टि उपाधि वाले ब्रह्मा, समष्टि उपाधि वाले विष्णु, समष्टि उपाधि वाले रुद्र, ये सब के सब कारण उपाधि वाले हैं। सभी को यहां सविता के अंतर्गत ले लेना, इनमें से कोई भी उसको जान नहीं सकते, और इसीलिए उनको सब लोग उपासना करते हैं, वरण करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसिता पुराणी। और ये जो कारणोपाधि ब्रह्मा है, कारणोपाधि विष्णु है, कारणोपाधि ईश्वर माने रुद्र है, या कार्योपाधि राजा है, कार्योपाधि विद्वान है, कार्योपाधि मूर्ख है, कार्योपाधि प्रजा है। राजा भी कार्य उपाधि है, प्रजा भी कार्य उपाधि है, कार्य उपाधि वाले विद्वान है, विद्वान भी कार्य उपाधि है, और मूर्ख भी कार्य उपाधि है, हैं? मनुष्य भी कार्य उपाधि वाला है तो पशु भी कार्य उपाधि वाला है, हैं? ये नहीं समझ लें कि कार्य माने अंतकरण, अंतकरण उपाधि मनुष्य के पास है, पशु के पास नहीं है, ये नहीं समझ लेना। मनुष्य भी कार्य उपाधि है, कार्य उपाधि वाले जीव हैं, और पशु आदि भी कार्य उपाधि वाले जीव हैं। ये सब के पास जो कुछ भी ज्ञान शक्ति है, चाहे व्यष्टि कार्य उपाधि वाले जीव मनुष्य हो, चाहे कार्य उपाधि वाले पशु आदि हो, चाहे कार्य उपाधि वाले चींटी मकोड़े हो, चाहे कारण उपाधि ब्रह्मा हो, चाहे कारण उपाधि ईश्वर विष्णु हो, चाहे कारण उपाधि रुद्र हो, इन सब को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है, ये सारे के सारे ज्ञान तो उसी शिव से प्राप्त हुआ। यानी यहां शिव पद का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म पद का अर्थ होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान रूप परमात्मा है उसी से ये प्राप्त हुआ। यानी निरुपाधिक जो शुद्ध अखंड चैतन्य है उसमें जो ज्ञान राशि है, ज्ञान घन कहते हो, उसी ज्ञान घन की एक चिंगारी निकलती है और वही चिंगारियों का अंश प्राप्त करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सर्वज्ञ हुए हैं, और राजा प्रजा आदि सब ज्ञानी हुए हैं, या विद्वान और मूर्ख अल्पज्ञ हुए हैं, ये सब के सब इनके पास जो ज्ञान की क्षमता है वो उसी से निकली हुई एक छिटा है, एक चिंगारी मात्र है, उसी को ये कहा प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। उसको और इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि उस तत्व को जो अक्षर है, जो केवल शिव है, और जिससे व्यष्टि और समष्टि उपाधि वालों को ज्ञान राशि प्राप्त होता रहता है, उस तत्व को नैनम मूर्धम न तीर्यम च न मध्ये परिजग्रवत्।